17 सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेय। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की अपनी अब तक की चर्चा में हम जिस बात को बराबर रेखांकित करते आए हैं और जो वस्तुतः हमारी चर्चा का केंद्रीय स्वर बनी है वह यह कि भक्ति काव्य धर्म और भक्ति की केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ ध्यान उपासना और उनके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाला काव्य नहीं है। धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में एक उन्नत मानवीय समाज और एक उन्नत मूल्य व्यवस्था के पक्ष में खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला काव्य है। ऐसा नहीं है जैसा कि प्रायः ऊपरी तौर पर समझ लिया जाता है कि सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में निर्गुण संतों के स्वर ज्यादा मुखर हैं और उनमें अधिक उष्मा है, जबकि सगुण भक्त की कविता में परंपरागत सामाजिक संरचना का प्रायः समर्थन हुआ है और उसमें चली आ रही सामाजिक सोच को भी थोड़े बहुत संशोधनों के साथ प्रायः स्वीकार किया गया है। वस्तुतः भक्ति और आध्यात्म की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद लगभग समानता ही है। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्त कवि अपने समय और समाज पर दृष्टि डालते हैं, उनका चित्रण करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं। यहाँ जरूर ऐसा लगता है कि सगुण भक्तों की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक सोच अधिक प्रगतिशील है और सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता के विरोध में ज्यादा मुखर और चिंतनशील है। परंतु इस निर्णय पर पहुंचने के पहले हमें निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की रचनाशीलता से समग्रता में साक्षात्कार करने की, उसे ऊपर ऊपर ही नहीं भीतर तक पढ़ने और गुनने की जरूरत है। लोक और शास्त्र से अपने अपने लगाव के चलते क्रमशः निर्गुण और सगुण कविता अपने अपने ढंग से समृद्ध और सीमाबद्ध जरूर हुई है, बदलते हुए समय ने भी उन पर अपने निशान लगाए हैं। निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज दर्शन एक जैसा जरूर नहीं है, परंतु जैसा हमने कहा, बावजूद इसके अपनी सामाजिक चिंता में अपने मानवीय सरोकारों में सगुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग थलग नहीं है। कविता महज विचार ही नहीं होती, मनुष्य का इंद्रिय बोध और उसका भाव जगत भी उसका अभिन्न अंग होते हैं, वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही मायने में कविता बनती है और संवेदना के धरातल पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, विचार के स्तर पर सगुण भक्तों ने जो भी कहा है और प्रतिपादित किया हो, बोध के धरातल पर, संवेदना के धरातल पर, चित्रण के धरातल पर, विचार के स्तर पर अपने कहे हुए से भिन्न मानव प्रेम, सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक ठाने और पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं, उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेय है। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई हैं। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है। उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर विरोध हैं। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत हैं। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण संतों और भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है उसका उद्भव संभव हुआ। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। इस बात को लेकर आचार्यों में भले मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्म मत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और इसका प्रतिकार किया जा सकता था। विश्रृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और रास्तों की खोज के प्रयास हुए, जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुआ लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच में लक्ष्य भी किया जा सकता है। निर्गुण संत कविता को अपनी आत्मीयता के दायरे में उसकी पूरी उष्मा तथा प्रभाव के साथ स्वीकार न करने वाले आचार्य शुक्ल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का ऐसा प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहित मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 65। शुक्ल जी ने यह बात मुख्यतः निर्गुण भक्ति की कविता को लक्ष्य करके लिखी है और इस क्रम में नामदेव और कबीर जैसे संतों का जिक्र विशेष रूप से किया है। हम कह चुके हैं कि निर्गुण संत कविता से आत्मीय न होते हुए भी उन्होंने उक्त संदर्भ में और उक्त लक्ष्य के तहत उसके आविर्भाव को उस युग की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सामाजिक जरूरत और उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया है। यह निर्गुण कविता अनेक कारणों से चलते कालांतर में पंथबद्ध होकर निष्प्रभावी भले बन गई हो, उसकी और जो भी असंगतियां और सीमाएं हों, तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक क्षितिज में उसका आविर्भाव और उसमें नानक दादू कबीर नामदेव रैदास जैसे संतों का योगदान एक बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धि है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उपलब्धि और बड़ी उपलब्धि वह इसलिए है कि भले ही धर्म और भक्ति के क्षेत्र में ही सही, किंतु सामाजिक जीवन के बीच पहली बार वर्ग वर्ण जाति नस्ल धर्म और संप्रदाय के भेदों तथा बंधनों को अमान्य करते हुए मानव हृदय के एकात्म तथा भक्ति के संदर्भ में मानव मात्र की समानता को रेखांकित किया गया। यह काम भले ही भक्ति और ईश्वरोपासना के सीमित क्षेत्र में हुआ हो, इसका प्रभाव भेदभाव बरतने वाली चली आ रही सामाजिक संरचना और उस संरचना को उचित ठहराने वाली सोच पर भी पड़ा, उस साधारण जनता पर पड़ा जो सामाजिक भेदभाव का शिकार बनती हुई सदियों से एक अमानवीय जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त थी। स्मरण रहे हिंदू मुस्लिम एकता इन संतों का लक्ष्य नहीं था, वरन भक्ति का एक ऐसा मार्ग निकालना, उसका संदेश देना इनका लक्ष्य था, जिस पर किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि से रहित मनुष्य सात्विक अंतःकरण और मन से चल सके, उसे बिना किसी हिचक के सुन और सहेज सके। हम कह चुके हैं सदियों से पीड़ित और कुचली हुई एक विशाल मनुष्यता ने इस रास्ते को अपनाया और इस संदेश को सुना। पहली बार उनमें आत्मगौरव की मनुष्य होने की भावना जागी। अपने ढंग से ही सही और अपनी बात को विशद न करते हुए भी कबीर पर अपने सारे आलोचनात्मक तीव्र के बावजूद शुक्ल जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक नाजुक मौके पर जनता के एक बड़े भाग को संभाला और नीची कही जाने वाली जातियों के मन में आत्मगौरव का भाव जगाया। इन संतों ने विशेषतः नानक और कबीर ने चली आ रही सामायिक संरचना की, उसके प्रभुओं और मसीहाओं की, उनकी, उसकी अमानवीयता की, धर्म और मजहब के नाम पर कर्मकांडों की, पूजा पाठ आराधना और उपासना के खोखले तौर तरीकों की, वे किसी भी धर्म और मजहब के हों, जमकर भर्त्सना की है, उनकी मखौल उड़ाई है, परंतु इससे इनकी वाणी को विध्वंसक करार देना, इन्हें लोक विरोधी या समाज विरोधी मान लेना सही नहीं है। यह गलती आचार्य शुक्ल से हुई है। वस्तुतः इस सारी आलोचना की बुनियाद पर ही एक मानव धर्म और एक मानव संस्कृति की वह इमारत खड़ी हुई है। मनुष्य सत्य का वह आदर्श स्थित है जिसकी बड़े संजीदा और बड़े सात्विक निर्मल मन से इन संतों ने परिकल्पना की थी और जिसके लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। हमने कहीं कहा है, ये बड़ी कोमल संवेदनाओं के, मानवीय करुणा की बड़ी तरल अनुभूतियों के संत हैं। मनुष्यता के दुख दर्दों से द्रवीभूत होकर ही इनकी वाणी मुखर हुई है। यदि वह कहीं कठोर और आक्रामक है तो अमानवीय इरादों के खिलाफ ही, जिन्हें इनकी प्रशस्त मानवीयता की सूरत में सहन नहीं कर सकते। निर्गुण संतों की यह वाणी उस युग के बृहद सामाजिक अन्याय और धार्मिक पाखंड के बीच गूंज सकी, सुनी जा सकी, उसका अनुगमन हो सका, उस युग की महत्व उपलब्धि होने के साथ साथ वह हमारी विरासत है। आज जबकि 20वीं शताब्दी के इस अंतिम चरण में समाज और धर्म की विनाशक शक्तियां एक बार फिर से हमारे सदियों के अर्जित उन्नत सामाजिक मूल्यों को क्षत विक्षत करने पर उतारू हैं, धर्म को पुनः संकरी और संकीर्ण गलियों में ढकेला जा रहा है, उसे विरूप और विद्रूप किया जा रहा है। निर्गुण संतों की यह विरासत हमारी मार्गदर्शक ही नहीं, हमारा वह हथियार भी है जिसके बल पर हम इन समाज और धर्म की विघटनकारी शक्तियों से लोहा ले सकते हैं। कहना न होगा कि लंबे अंतराल के बाद ये संत आज हमारे लिए फिर से प्रासंगिक हो उठे हैं। प्रासंगिक वे पहले भी थे, परंतु आज की स्थितियों ने उनकी प्रासंगिकता न केवल गहरा एहसास हमें प्रासंगिकता का न केवल गहरा एहसास हमें कराया है, उसे सार्वकालिक भी बना दिया है। ऊपर हमने 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण की बात की है। समय का यह वह बिंदु है जिसे आज हम जी रहे हैं। समाज तथा धर्म को विरूप करने वाली, उसे संकीर्ण अर्थ देने वाली और उसके नाम पर मनुष्य के विनाश का समारोह मनाने वाली जिन शक्तियों का हवाला हमने दिया है, जिन चुनौतियों की बात हमने की है, उनसे निपटने के लिए आज सेक्युलरिज्म के आदर्श की बात की जा रही है। यह सेक्युलरिज्म शब्द यूरोप के मध्ययुगीन पाखंडों का विरोध करते हुए सामने आया था। हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल भ्रांत अर्थों में किया जा रहा है। या तो इसे धर्मनिरपेक्षता का पर्याय बताया जा रहा है या सर्वधर्म संभाव का। सेक्युलर शब्द अपनी स्पिरिट में इन दोनों आशयों का प्रतिकार करता है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का यदि कोई अर्थ हो सकता है तो वही हो सकता है जिसे हम उपर्युक्त संतों की वाणी तथा करनी में पा सकते हैं। वह अर्थ है वर्ग, वर्ण, नस्ल, धर्म, जाति या संप्रदायगत भेद बुद्धि से ऊपर उठकर मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में देखना। इस मानुष सत्य के अलावा सेक्युलरिज्म और कुछ नहीं है, और इस मानुष सत्य के समर्थ प्रतिनिधि हैं हमारे मध्यकाल के संत, जिनकी सही शिनाख्त उनकी मनुष्यता और केवल मनुष्यता है। ये ना हिंदू ना मुसलमान हैं, और इसे वे डंके की चोट पर घोषित करते हैं। इन संतों का यह सेक्युलर व्यक्तित्व और आचरण मिसाल है हमारे और अपने समय के लिए, और उपलब्धि है उस मध्यकाल की जिसे आज की तथाकथित आधुनिकता के बरक्स हम प्रतिगामी कहते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जो कबीर शताब्दियों पहले एक मानव संस्कृति और एक मनुष्य धर्म की बात करता है, सामाजिक धार्मिक पाखंडों और प्रपंचों के खिलाफ आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, उसे हम मध्यकालीन कहते हैं, और सामाजिक धार्मिक भेदभाव तथा उससे जुड़े तमाम सारे पाखंडों और पाखंडों का आचरण करने वाले आज के तथाकथित धर्म और समाज के ठेकेदार महज इस नाते आधुनिक हैं कि वे समय के उस बिंदु पर अपनी कारगुजारियां कर रहे हैं जिसे आधुनिक समय कहा जाता है। ये मध्यकालीन संत हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं, हमारे सामने इस बात की जरूरत को रेखांकित करते हैं कि मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध की पहचान समय के गति चक्र से न होकर विचारधारा, मूल्य व्यवस्था और उससे जुड़ी मानसिकता के आधार पर हो। इस बिंदु पर कुछ चर्चा हम सगुण भक्ति काव्य की करना चाहेंगे, जो विचार के स्तर पर परंपरागत सामायिक सोच और सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर पाता। कृष्ण भक्ति काव्य से चलकर राम भक्ति काव्य में और भी रूढ़ हुआ दिखाई पड़ता है। इस स्थिति के अपने वस्तुगत कारणों का संकेत हम पीछे कर चुके हैं, विशेषतः तुलसीदास के प्रसंग में, पर हमारा यह कहना भी है कि सोच के धरातल पर भले ही सगुण भक्ति कविता निर्गुण कविता की तुलना में अपने सामायिक दृष्टिकोण में पिछड़ी हुई हो, संवेदना के धरातल पर वह मनुष्य और उसकी नियत के प्रति कम चिंताशील नहीं है। निर्गुण संतों के अपने अलग अंतर्विरोध हैं। जहाँ तक सगुण भक्तों का सवाल है, उनके अंतर्विरोध का स्वरूप यह है कि जहाँ और जब भी वे भक्ति आंदोलन की उदात्त मानवीय चेतना से एकतान हुए हैं, वे निर्गुण संतों के समान ही मनुष्य सत्य का उद्घोष करते हैं, मनुष्य के प्रति होने वाले सामाजिक अन्याय का प्रतिवाद करते हैं और महज विचार के धरातल पर ही नहीं, चित्रण के धरातल पर भी अपनी इस उन्नत सोच को अभिव्यक्ति देते हैं। उन सामाजिक और मानवीय मूल्यों की हिमायत करते हैं जिनके पक्ष में निर्गुण संत खड़े हुए थे, किंतु जब वे भक्ति आंदोलन की उदात्त चेतना से अलग उन संस्कारों से बन जाते हैं जो परंपरा ने, समाज ने, उनकी वंश परंपरा ने उन्हें दिए हैं, वे परंपरागत सामाजिक सोच के तहत उस व्यवस्था की हिमायत करते हैं जो शास्त्र सम्मत है, वेद विहित है। यह द्वंद्व सगुण भक्त कवियों में, विशेषतः तुलसी में, सबसे अधिक मुखर होकर सामने आता है। परहित को सबसे बड़ा धर्म और परपीड़ा को सबसे बड़ी अधमाई कहने वाले तुलसी जब धर्म को वेद और शास्त्र से जोड़ते हैं, परपीड़ा पर टिकी हुई परंपरागत समाज व्यवस्था की कुछ संशोधनों के साथ हिमायत करते हैं, तो उनकी चेतना के ये दो स्तर साफ उभर आते हैं। फिर भी तुलसीदास में ऐसा बहुत कुछ है, कवितावली में, विनय पत्रिका में, हनुमान बाहुक में और मानस में भी, और सूरदास में तो बहुत उभरे हुए रूप में, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर समूचा भक्ति काव्य प्रशस्त मानवीय सरोकारों की का गहरी मानवीय चिंता का, मानव करुणा का काव्य है। सब कवियों की सामाजिक सोच एक जैसी भले न हो, उसका मूलवर्ती स्वर उदात्त है, वह मनुष्य के सामाजिक न्याय के पक्ष का काव्य है। इस भक्ति काव्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसका भाषा में रचा जाना है और इस नाते साधारण जन के साथ इसकी संपृक्ति है। पहली बार कविता जनता की भाषा में जनमन को संबोधित होती है। जनमन को संबोधित ही नहीं होती, जनमन को जनता की अपनी आशाओं आकांक्षाओं को उनके जीवन में उतर कर उसे भली भांति पढ़ते और गुनते हुए वाणी भी देती है। लोक जीवन के बीच, साधारण जनमानस के बीच इस भक्ति काव्य की जो लोकप्रियता है, उसका एक बड़ा कारण उसका लोक की अपनी भाषा में लिखा जाना है। लोक की अपनी भाषा में इसका लिखा जाना इस नाते भी महत्वपूर्ण है कि आगामी रचनाशीलता के लिए इस बात में एक मिसाल बनता है कि जनता की अपनी जबान में रची गई कविता ही जनता के दिल दिमाग को जीत सकती है। बसरते वह उस जनता की आकांक्षाओं से जुड़ी हो। लोक जीवन तथा जनता से जुड़ने की बातें सब करते हैं। लोक के हृदय और जनता की अपनी बोली बानी का प्रतिनिधि होने का दावा भी सभी करते हैं, किंतु लोक की अपनी बोली बानी में, लोक की अपनी आशाओं आकांक्षाओं को लोक हृदय में उतर कर मूर्त कितने कर पाते हैं, यह कहने की बात नहीं है। ये भक्त और संत मानक हैं और आज उस रचनाशीलता के लिए और रचनाकारों के लिए, आज की उस रचनाशीलता के लिए और रचनाकारों के लिए जो वस्तुतः साधारण जन के हित में प्रतिश्रुत हैं, जनता के दिल दिमाग में गहरे उतरना और सदियों के अंतराल के बावजूद स्थायी बने रहना इन संतों और भक्तों की अपनी रचना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह केवल धर्म और भक्ति का जादू या नशा ही नहीं है, जनमानस की उनकी गहरी पहचान और उससे उनका एकात्म है, जिसके चलते अपनी बात को वे बिना किन्हीं चमत्कारों का सहारा लिए सरल किंतु प्रभावी ढंग से कह सके हैं। उनके पाठकों का दायरा भी इतना बड़ा है कि शिक्षित अशिक्षित स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध सब उसमें आ गए हैं। अपने अपने ढंग से अपनी अपनी ग्राह्यता के साथ अपने अपने प्रयोजनों को पाते हुए उनकी वाणी भले ही भक्ति की हो, उनका साध्य भले ही भक्ति हो, वह जितनी ही भक्त वाणी है उतनी ही कविता सरल किंतु वेधक गहन अनुभूतियों वाली और पारदर्शी ऐसी कविता ही कालजयी कहलाती है। अपने समय के लिए तो वह महत्वपूर्ण होती ही है, आगे के समयों के लिए भी उतनी ही अर्थवान उतनी ही प्रासंगिक होती है। कुछ जाए इस कविता का लिया जाए और देखा जाए कि वह क्यों कर इतनी हमारी इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। हम कह चुके हैं कि कविता महज विचार नहीं होती, उसका संसार बुनियादी तौर पर इंद्रिय बोध और भावों का संसार है। विचार इनकी संश्लिष्टता में ही कविता में आ सकते हैं। महान रचनाओं में तीनों तत्वों की संश्लिष्टता ही महानता की कसौटी बनती है। जहाँ तक भक्ति कविता का संसार है, निर्गुण संतों की वाणी कविता की दृष्टि मानक नहीं है। शुक्ल जी के मत में तो वह कविता ही नहीं है, परंतु यदि वह कविता है तो विचार बहुल कविता। भक्ति के धरातल पर ही वह अपने कविता होने का प्रमाण देती है, जहाँ भक्ति के प्रगाढ़ अनुभूति को बड़े पारदर्शी तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। इससे इतर वह काव्य तत्व में दुर्बल है। फिर उसका संसार भी सीमित संसार है, महज भक्ति के दायरे में बंधा हुआ। उसकी तुलना में मलिक मोहम्मद जायसी तथा सगुण भक्तों की कविता अपनी संपूर्णता में महत कविता के रूप में अपना परिचय देती हैं। इन कवियों के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त है कि मनुष्य के इंद्रिय बोध और भाव जगत की समर्थतम अभिव्यक्ति हमें इस काव्य में मिलती है। वह मीरा का हो, जायसी का हो, सूर्य तुलसी का हो, मनुष्य के मन में गहराई तक ये भक्त प्रवेश कर सके हैं और उसे उद्घाटित कर सके हैं। मनुष्य के दुख सुख हो अथवा इनका आत्मनिवेदन, आख्यानक तथा मुक्तक दोनों ही काव्य प्रकारों में इन भक्त कवियों ने मानव मन को गहराई तक जाकर छुआ और उजागर किया है। यह कविता जीवन से जुड़ी हुई कविता है, मनुष्य के राग की कविता है। जीवन के समूचे प्रसार में फैली वह हमारे समक्ष संसार के सौंदर्य को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के इंद्रिय अनुभवों को उनकी संपूर्णता में खोदती है। वह उन्नत मानवीय बोध की कविता के रूप में हमें अपनी पहचान कराती है। भक्ति के आवरण के बावजूद वह हमें मनुष्य और जीवन के सारभूत सत्य से परिचित कराती है। वह जनमन की आकांक्षाओं को, लोक जीवन के बहुआयामी सौंदर्य को उद्घाटित करने वाली संपूर्ण और मुकम्मल कविता है। उसकी महत्ता और उसके प्रभाव को इस बात से भी जाना जा सकता है कि वह अपने समय का अतिक्रमण कर हमारे अपने समय के महाकवियों का आदर्श बनी है, उन्हें प्रेरणा दे सकी है। भक्ति की यह कविता वस्तुतः, जैसा कि हमने कहा, मानवीय चिंता की कविता है। भक्तों के सामाजिक आदर्श भले भिन्न हो, वह उन्नत सामाजिक मूल्यों की कविता है। वह हमारे सामाजिक संबंधों, पारिवारिक नाते रिश्तों को एक मूल्य व्यवस्था देने वाली कविता है। ये मूल्य बदले हुए समय में उसके साथ पूरी तरह भले न अट पाए, इन भक्तों और संतों की सामाजिक चिंता के परिचायक जरूर हैं। आचार्य द्विवेदी ने निर्गुण और सगुण भक्ति कविता में भिन्नताओं के बीच कतिपय ऐसे तत्वों को उभारा है जहां उनमें कोई भेद नहीं है। इन तत्वों में एक संतों और भक्तों का यह समान विश्वास है कि प्रेम से बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रेम सभी संतों और भक्तों का केंद्रवर्ती स्वर रहा है। इस प्रेम के समक्ष मनुष्य और मनुष्य के बीच के सारे भेद नगण्य हैं। यह वह तार है जो भेदों का अतिक्रमण करता हुआ मनुष्य मात्र के हृदयों के बीच से उन्हें एक सूत्र में गूंजता हुआ गया है। भेद बुद्धि के विसर्जन के बाद ही इसकी उपलब्धि हो सकती है। अहं को भस्म करके ही उसे पाया जा सकता है। उसे पा लेना ईश्वर को पा लेना है। इसे सभी संतों और भक्तों ने बार बार दोहराया है। कबीर जब कहते हैं कि यह प्रेम किसी बाग बगीचे या खेत में नहीं पैदा होता, न ही यह बाजार में बिकता है, राजा हो या प्रजा कोई भी इसे पा सकता है, शर्त यही है कि अपना शीश काट कर पहले जमीन पर रख देना होगा। तो वे वस्तुतः इस प्रेम को ईश्वर के समकक्ष ही घोषित कर रहे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ भी उनके राम को यदि कुछ भी प्रिय है तो यह प्रेम ही है, जिसमें अनन्यता है, समर्पण है, समस्त भेद बुद्धि का त्याग है, जो प्राण मात्र तक व्याप्त है। मीरा इस प्रेम को लेकर ही बावली रही और उससे उपजे दर्द को दर दर भटकते हुए सबको बांटती फिरी। सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ भी यही प्रेम ईश्वर रूप बनकर व्याप्त है। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, ये संत और भक्त बराबर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ईश्वर से आराध्य से एकात्म और एकतान होने के लिए जरूरी है कि पहले मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे। मानव प्रेम की बुनियाद पर ही वह इमारत खड़ी होगी जिसके भीतर पहुंचकर आराध्य का दीदार हो सकेगा। धर्म और आध्यात्म के आवरण में कही गई ये बातें संतों और भक्तों की उस मानवीय चिंता की उपज हैं जो समूची मनुष्यता को प्रेम के मजबूत धागे में बंधी देखना चाहती थी। जब संसार और समाज में सर्वत्र विग्रह की स्थितियां व्याप्त हों, चारों ओर हिंसा, घृणा, विनाश और रक्तपात के नजारे दिख रहे हों, प्रेम की बुनियाद पर, मनुष्य प्रेम की बुनियाद पर टिकी संतों और भक्तों की वाणी का मूल्य और महत्व क्या हो सकता है, यह कहने की बात नहीं। भक्ति कविता की वह संतों की हो अथवा भक्तों की, एक बुनियादी विशेषता उसकी यह दृढ़ स्वीकृत है कि संसार असार या मिथ्या नहीं है और न ही उसके सुख दुख असार या मिथ्या है। ये संत भले ही अनहद नाद सुनते हों, भले ही शून्य में समाधि लगाते हों और भले ये भक्त भले ही नित्य वृंदावन में रमते हों, कल्पना के राम राज्य में विचरते हों, संसार और उसके रहने वालों के सुख दुख से कभी विरत नहीं हुए हैं, इनकी भक्ति वैराग्य मूलक भक्ति नहीं है, वह राग तत्व को लेकर पल्लवित होने वाली भक्ति है। संसार और समाज, घर और परिवार के सारे नाते रिश्ते उसमें स्वीकृत हैं। इन्होंने बार बार इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि भक्ति को पाने के लिए और इसके माध्यम से आराध्य तक पहुंचने के लिए वैरागी बनने, घर परिवार छोड़ने या संसार और समाज से नाता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठेठ संसार के बीच रहते हुए अपने सारे सांसारिक, सामाजिक और पारिवारिक दायित्व निभाते हुए, धर्म करते हुए मनुष्य इस भक्ति का अधिकारी हो सकता है, ईश्वर को पा सकता है। गोस्वामी जी की भक्ति का विवेचन करते हुए शुक्ल जी का कहना है कि राम के यहाँ का रास्ता ठेठ जीवन के भीतर से गया है। इन संतों और भक्तों ने जो यह सब प्रतिपादित किया है उसे स्वयं आचरित भी किया है। कर्म प्रधान विश्व से भागकर, दायित्वों से विमुख होकर, भभूत लगाकर, घर बार छोड़कर की जाने वाली भक्ति छद्म और दिखावा है। जीवन के भीतर से, संसार और समाज के सारे दायित्वों के बीच से कर्ममय कर्मठ जीवन के संपूर्ण स्वीकृत के साथ उपजी भक्ति संबंधी इस सोच ने अपने समय और समाज में तो अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका का निर्वाह किया ही है, वह आगे के समय में भी एक आदर्श के रूप में मान्य हुई। इसे इन संतों और भक्तों की समाज को एक मानवीय एक सराहनीय देन ही माना जाएगा। इस कविता का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम लोक संस्कृत का उद्घाटन है। लोक संस्कृत का उद्घाटन ये भक्त इसलिए कर सके हैं क्योंकि ये स्वतः उस संस्कृत की उपज थे। इनकी संवेदना मूलतः किसान संवेदना है। अवध की लोक संस्कृत जहाँ तुलसीदास और जायसी में अपनी सारी विशेषताओं के साथ मूर्त हुई है, वहाँ सूरदास में ब्रज प्रदेश की लोक संस्कृत अपनी सारी मधुरता के साथ विद्यमान है। मीरा के पदों में राजस्थान की लोक संस्कृत के स्वर गूंजे हैं और उनके अपने दर्द में घुल मिल गए हैं। लोक जीवन के चित्रों के अलावा इन भक्त कवियों की भाषा में भी लोक मन की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इनके पदों में लोक गीतों की सी मिठास है। इनके छंदों और इनके काव्य रूपों का लोक मन से सहज नाता रिश्ता है। लोक की परिचित और आकांक्षित शैली में रची उनकी कविता इसी नाते लोक चित्त से नहीं उतरी है, उसमें नक्श की सी हो गई है। इसे एक महत्वपूर्ण घटना ही कहा जाएगा कि युग की विशिष्ट वस्तुगत स्थितियों के संदर्भ में मध्यकाल के एक खास दौर में हमें उन वर्गों और वर्णों से प्रथम कोट के संत मिले जिन्हें शूद्र और अंत्यज कहा जाता था। ऐसा फिर आगे कभी नहीं हो सका। हमें भक्ति कविता के अंतर्गत नारी भक्तों की एक जमात मिली, जैसा कि उस युग के लिए सहज न था। यही नहीं, समूचे भक्ति काल में इतने कालजयी कवियों भक्तों का एक साथ आविर्भाव अपने में कम आश्चर्यजनक नहीं है। यह सब खास भक्ति युग की विशेषता है। ये वे रचनाकार भक्त हैं जो सदियों से भारतीय जनमानस में विद्यमान हैं, अपनी रचनाशीलता के बूते पर। इनकी आस्था, इनका स्वाभिमान, इनका लोक की जड़ें जड़ों से जुड़ना, यह सब हमारे लिए आज के लिए मिसाल है। मानव जीवन के सारे पक्षों पर इन्होंने लिखा। जीवन के सारे कार्य व्यापार इनके लेखन की परिधि में आए। व्यक्ति, परिवार, समाज सबके अंतरंग को इन्होंने देखा और उनका मार्गदर्शन किया। प्रेम को अपना आदर्श मानते हुए इन्होंने समाज के समक्ष उसकी शक्ति को उजागर किया। प्रेम का ही तत्व है जहाँ सगुण निर्गुण सब समर्पित हैं। यह प्रेम नाना भूमियों में, नाना मनोदशाओं में इनकी अभिव्यक्ति का विषय बना है। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति के युग में प्रेम के इनके संदेश ने बहुत से घावों को भरा। सामाजिक जीवन में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की। ये निष्प्रिय भक्त थे जिन्हें राजसत्ता या समाज सत्ता किसी का भी कोई भी प्रलोभन सर्वथा अमान्य था। अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पित इनका सरोकार सिर्फ साधारण जनता और उसके जीवन से था। उसी को उन्नत बनाने में ये लगे रहे। इसी नाते ये उसके द्वारा स्वीकार हुए और सराहे गए। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का यह एक संक्षिप्त विवेचन है। रचना वही महत्वपूर्ण होती है जो अपने समय के लिए तो जरूरी हो ही, आने वाले समय के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हो। भक्ति कविता ऐसी ही कविता है जो अपने समय में तो महत्वपूर्ण थी ही, आज के समय के लिए भी अर्थवान है। वह हमारी ऐसी विरासत है जिसे हमें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना है और संरक्षण देना है।